हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विहा के बगल वाले वार्ड में रुहान ने अपने और अनाही के लिए बेड लगवा लिए थे। एक वार्ड बॉय धीमे कदमों से चलकर उनकी बेंच के पास आया और फिर सर झुकाते हुए बोला, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। अनाही जो हल्की नींद में थी, वार्ड बॉय की आवाज सुनकर उसकी आंखें झट से खुल गईं और वो रुहान की गोद से उठने लगी। तो रुहान ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं मैडम जी, वो चला गया। अनाही उठी और अपने बिखरे बालों को समेटते हुए बोली, ऐसे अच्छा नहीं लगता है सबके सामने, ऊपर से कॉरिडोर है, यहां से लोग गुजर रहे हैं। रुहान बेड से उठा और मुस्कुराकर बोला, इसलिए मैंने आपके लिए अलग रूम रेडी करवा लिया है। इतना बोलने के साथ रुहान ने आगे बढ़कर अनाही को अपनी गोद में उठा लिया। गिरने के डर से अनाही ने रुहान के कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, आपकी पत्नी इतनी ज्यादा कमजोर भी नहीं हुई है, मैं खुद चलकर भी जा सकती थी। रुहान ने आंखें छोटी करते हुए कहा, पर मैं नहीं चाहता मेरी मैडम जी चलकर जाएं। अनाही की आवाज अभी नींद भरी थी, वो काफी ज्यादा थकी हुई थी, उसकी बोझिल पलकें बार बार छपक रही थी। रुहान अंदर ले जाकर अनाही को आहिस्ता से बेड पर लेटाया और फिर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अब कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आप किसी अस्पताल में हैं या कुछ हुआ है, खाली दिमाग रखेंगी तो आपको अच्छी नींद आएगी और उसके बाद आप सिचुएशन को और भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगी। इतना बोलकर रुहान ने फिर अनाही को ब्लैंकेट से ढक दिया और फिर से उसके पास बैठकर उसका हाथ सहलाने लगा। अनाही ने अधखुली आंखों से रुहान को देखते हुए कहा, आप नहीं थके? रुहान आगे बढ़ा और इस बार अनाही के गाल को चूमते हुए बोला, नहीं आप सो जाइए, मैं मम्मी पापा को लेने स्टेशन जाता हूँ। अनाही अभी भी धीरे धीरे पलके झपकते हुए रुहान के चेहरे को देख रही थी। रुहान उसके और करीब आया और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, वैसे इस कमरे में दवाइयों की स्मेल नहीं आ रही है ना, यहाँ पर नींद तो अच्छी आ सकती है, बस ये जो पर्दे हैं ये थोड़े गंदे लग रहे हैं, शायद ये रूम पहले किसी और का था और ये हो सकता है सिर्फ VIP रूम हो जहाँ पर मरीज के साथ आने वाले लोग ही रहते हों, इसलिए इसकी सफाई भी अच्छी की हुई है। मुझे लगता है ट्रेन आज थोड़ी लेट हो गई है, मैंने एक लड़के को मैसेज किया था कि ट्रेन आते ही मुझे बता दे, वो मुझे बता रहा था कि 15 मिनट लेट है। मैं कोशिश करूंगा मैं जल्दी पहुंच जाऊं और उनके ट्रेन से उतरते ही वे सबसे पहले मुझे ही देखें ताकि उन्हें घबराहट महसूस ना हो। रुहान की बातें शुरू होने के बाद अनाही को नींद आने लगी थी और वो थोड़ी देर में ही सो गई। इसे महसूस कर रुहान ने एक बार झुकते हुए उसके होठों पर हल्का सा किस किया और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से ढकते हुए रूम से बाहर आ गया। उसने रूम को हल्का सा बंद करते हुए बाहर खड़े बॉडीगार्ड से कहा, ख्याल रखना इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, चाहे कोई भी हो उसे यहीं से ही बाहर भेज देना। बॉडीगार्ड ने हाँ में सर हिलाया और रुहान तेज कदमों से अस्पताल से बाहर चला गया। करीब आधे घंटे बाद ही रुहान काशी और आधे शाम को लेकर हॉस्पिटल आ गया था। काशी ने रो रोकर अपनी आंखें सूज ली थीं और वो राधे श्याम का हाथ मजबूती से पकड़े डरते हुए अस्पताल के अंदर आ रहे थे। रुहान उन्हें पहले अनाही के कमरे में ले गया। अनाही को सोता हुआ देखकर काशी के दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसे पता था कि उसकी बच्ची इन सब में कितनी परेशान हुई होगी। उसके करीब जाकर जैसे ही उसके सर को सहलाने लगी, रुहान ने जल्दी से वहां जाकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसे हाथ लगाने से वो उठ जाएगी और फिर वापस नहीं सोएगी। वो बहुत धीमी आवाज में ये सब बोल रहा था। उसके चेहरे से मासूमियत झलक रही थी, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी काशी के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई और उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं आपकी पत्नी को डिस्टर्ब करूं तो मैं नहीं करूंगी। रुहान ने उन्हें दूसरे बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप यहां बैठ जाइए और सुबह होते ही आप विहा से मिल लेना, शायद सुबह तक उसे होश भी आ जाएगा। इतना बोलकर रुहान तेज कदमों से उस कमरे से बाहर चला गया और जाकर उस बेंच पर बैठ गया जहां पहले वो और अनाही दोनों एक साथ बैठे थे। सुबह करीब 5 बजे रुहान की आंखें तब खुली जब अनाही ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। रुहान झट से उठकर बैठते हुए बोला, क्या हुआ मैडम जी, सब ठीक है ना? अनाही उसके पास बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, आप रात को यहाँ क्यों सोए थे? देखो पूरी गर्दन लाल हो रखी है, यहाँ बहुत ज्यादा मच्छर हैं, आपको मेरे कमरे में आ जाना चाहिए था। अगर मम्मी पापा आ गए थे तो मुझे जगा देती, मैं उनके पास बैठ जाती और आप सो जाते। रुहान ने मुस्कुराकर अनाही का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए कहा, नहीं मैडम जी, मैं आपको कैसे जगा सकता था, आप कैसी बातें कर रही हैं? अनाही फिर परेशान होते हुए कहा,
मुझे विहा के कमरे में जाना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वेदांत जी ने अपनी क्या हालत बना रखी होगी और कैसे रिएक्ट करेंगे। रोहान ने उसका हाथ अपने कंधे पर रखते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा सोचती हैं मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वहां डॉक्टर भी आ गईं। डॉक्टर जैसे ही विहा के कमरे के अंदर गईं, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वेदांत फर्श पर घुटनों के बल बैठा था और विहा का एक हाथ पकड़ रखा था। डॉक्टर तेज कदमों से उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सर आप यहां फर्श पर क्यों बैठे हैं, ठंड लग जाएगी, आप उधर चलिए। वेदांत जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आया हो, डॉक्टर को देखकर उसने जल्दी से कहा, इसे चेक करिए ना कि अभी तक उठी क्यों नहीं है, मैं कब से इसका इंतजार कर रहा हूं। सोने के कारण वेदांत की आवाज बुरी तरह बैठी हुई थी, जिसे महसूस कर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर ध्यान से विहा के चेहरे को देखते हुए बोली, बस कुछ देर और सर, फिर सेडेटिव का असर खत्म हो जाएगा और इनको होश आ जाएगा। वेदांत ने फर्श से उठने की कोशिश की तो वो लड़खड़ा गया और डॉक्टर ने उसे संभालते हुए काउच पर बैठा कर कहा, आपको ऐसे खुद को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी बीवी को आपकी जरूरत है, मैं सिर्फ समझाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ, आई होप आप मेरी बातों को आगे से ध्यान में रखेंगे। इतना बोलकर डॉक्टर फिर विहा के पास आई और उसे चेक करने लगी। करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर विहा को चेक करके वापस चली गई और ठीक उसी वक्त काशी और राधे श्याम भी विहा से मिलने के लिए कमरे के अंदर आए। काशी दरवाजे तक तो आ चुकी थी, लेकिन अंदर अब उसके कदम नहीं बढ़ रहे थे। राधे श्याम ने दोनों हाथों से उसे कंधों से पकड़ा और फिर जबरदस्ती विहा के पास ले जाते हुए बोला, तुम्हारी ही बेटी है, किसी और की नहीं, जो पीछे कदम रख रही हो। काशी ने घबराहट से सूखे अपने गले को तर करते हुए कहा, ये सब कुछ इसके साथ क्यों हो रहा है, इसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं। इतना बोलकर काशी से सकने लगी तो राधे श्याम ने गहरी सांस भरते हुए कहा, अब रोना बंद करो तुम, तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या कल से रोकर। काशी ने जैसे ही सफेद पड़ चुके विहा के गोल चेहरे को देखा, उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसका रोना और भी ज्यादा बढ़ गया। मुड़ते हुए उसने राधे श्याम को गले लगाते हुए कहा, मैं इसको इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। राधे श्याम ने एक हाथ से काशी का सिर सहलाया और फिर विहा की तरफ देखने लगा। सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो।
वही वेदांत भी काशी और राधे श्याम की मौजूदगी से डर से कांपने लगा था। वो एक माता पिता को अपनी बच्ची के लिए रोते हुए देख रहा था और उन बच्चों की हालत का जिम्मेदार वेदांत फिलहाल खुद को समझ रहा था। अगर वो वक्त पर आ जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो अपने काम को छोड़कर अपनी बीवी को टाइम देता तो आज सब कुछ बिल्कुल सही होता। वेदांत का सिर इतना तेज दर्द कर रहा था जैसे किसी भी पल फट जाएगा और उसकी आंखें अब पानी भरने से जलने लगी थीं, जैसे अब उसके आंसू तेजाब बन गए हों।